اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیرت النبوی کے مدنی دور کے سلسلے میں آج جس ٹاپک کو دیکھیں گے وہ ہے غزوہ احد۔ ابھی تک جو حالات ہم نے دیکھے وہ غزوہ بدر کا غصہ اور اس کا انتقام جو تھا وہ مکہ والوں کے دلوں میں بھی دکھا، اور اسی طرح یہود کے کچھ لوگوں میں بھی تھا، اور اس میں بیچ میں چند چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اس سے ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اب حالات بالکل غزوہ بدر کے لیے منتظر دکھتے ہیں۔ قریش نے انتقامی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ بدر کے معرکے میں جو شکست ہوئی اور جو نقصان ہوا اور جو ان کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کا صدمہ ان کو برداشت کرنا پڑا، اس سے تو آپ کہہ لیجئے کہ غیظ و غضب میں وہ کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مرنے والوں پر نوحہ کرنا، ان پہ رونا دھونا اس سے بھی منع کر دیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو کوئی سائیکلوجیکل خوشی نہیں دینا چاہتے تھے، اور قیدیوں کو جو آزاد کروانا تھا فدیے کے بدلے میں اس میں جلد بازی سے بھی روک دیا تاکہ مسلمان ان کے غصے اور غم کا اندازہ نہ لگائے۔ یہاں ایک بات سمجھیے گا، ہم جب کبھی ریئیکشن شو کرتے ہیں نا اپنے دشمن یا اپنے مخالف کی کسی بات پہ، تو اصل میں ہم اس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو انسان کو بہت زیادہ آنریبل بیہیویئر رکھنا چاہیے اور اپنی ڈگنیٹی لوز نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ غزوہ بدر کے آخر میں ہی یہ بات تو وہ کر ہی چکے تھے کہ مسلمانوں سے اب ایک بار پھر جنگ کرائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ فتح جو ہے یہ ایک اتفاقی فتح ہے، ان کو کیا پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد کی پہلی کڑی تھی، آگے اللہ نے اور مدد بھی کرنی تھی، لہٰذا انہوں نے سوچا اب اور تیاریاں کرتے ہیں اور ایسی جنگ لڑیں گے کہ ہمارا سارا غصہ بھی دور ہو جائے گا اور مسلمانوں کو مزہ آ جائے گا کہ ہم نے ایک جنگ جیت کر کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا۔ اب جو ان کے بس بچے کھچے سردار تھے ان میں سے اب غزوہ احد کی تیاریوں میں اکرمہ بن ابی جہل تھے، صفوان بن امیہ تھے، اور ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ سب سے زیادہ جوش میں تھے اور آگے آگے تھے، اور اگر دیکھا جائے تو ان کی کمر تو ٹوٹ چکی تھی۔ ایک بڑا سردار یا لیڈر چلا جائے تو اس سے کتنا کچھ ہل جاتا ہے، کہاں جب ان کے اتنا کچھ چلے گئے۔ بہرحال اپنی ہمت انہوں نے جمع کی۔ یہاں سے ایک بہت اچھی بات ہے سیکھنے کی، اور وہ کیا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایک شکست ہو گئی، نو پرابلم، آئندہ کے لیے فتح کے لیے کوشش کرے، انسان تو جیت جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو غزوہ بدر کا سبب بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر لے گئے تھے، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک دیا۔ جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ دیکھو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دھچکا دیا، تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، تو کیا اب تم ان سے جنگ کرنے کے لیے مال نہیں لگاؤ گے؟ یعنی جیسے کہ آپ کہیں کہ فنڈ ریزنگ کے لیے ان کو خوب ایکسپلائٹ کیا، ان کو جوش دلایا۔ قریش کے لوگ بھی چونکہ اس صدمے سے دو چار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارا مال جس کی مقدار تقریباً 1000 اونٹ تھے، ذرا اندازہ کیجئے گا، تصور کی آنکھ سے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا قافلہ تھا یہ، اور 50,000 دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اتنا سامان تھا، جنگ کی تیاری کے لیے دے دیا۔ اسی بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی تھی، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 36 ہے، 36، ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر بھی یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے والنٹیئر کام شروع کر دیا، رضاکارانہ طور پر لوگ جنگی خدمت کا کام کرتے، جو کچھ کر سکتا تھا وہ سب کرنے لگے۔ انہوں نے اوپن لوگوں کو انویٹیشن دیا، کچھ لشکر تھے، احابیش جو ہوتا ہے یہ لشکر کے لیے آتا ہے، یعنی لشکروں نے، کنانہ اور اہل تہامہ کے کچھ لوگ تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں، کہا کہ وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ خوب انہوں نے موٹیویٹ کیا، کسی کو رغبت دلائی، کسی کو حرص دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس میں ایک اور انہوں نے کام کیا کہ ایک شاعر تھا ابو عزہ، جو جنگ بدر میں قید ہوا اور جس کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر عہد لیا تھا اس سے کہ آپ کے خلاف کبھی نہیں بولے گا، اور احسان کے طور پر بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا۔ اسے سفیان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگرز سے مدد لی کہ تم گانے گاؤ تاکہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے لوگوں کے جو ہمارے باقی ہیں ان کے جذبات بھڑکیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف آئیں، اور اسے عہد کیا لیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ واپس آ گیا تو اس کو خوب مال دے گا، ورنہ اگر مر گیا تو ہم اس کی لڑکیوں کی کفالت کریں گے۔ अब देखिए कि ये दुनिया का लालच ऐसा बुरा होता है कि अबू उस्सा ने अल्लाह के नबी से किया हुआ अहद भुला दिया, पसे पुश डाला, और गैरत और हमीयत के जज्बात जो थे उसको इतना ज़्यादा मसहूर करके कि उसने फिर अशार पढ़ के कबाइल को भड़काना शुरू कर दिया। इसी तरह एक और शायर था, मुसाफे बिन अब्द मुनाफ, इसको भी इसी मुहिम के लिए तैयार किया। फिर बीच में एक चोट पड़ चुकी थी गजवे सुवैक के नाम पे। अबू सुफियान ने इस गजवे से वापस आते हुए जो सामान की एक बड़ी तादाद खोई थी, इसके भी खिलाफ लोगों को भड़काया कि देखो मुसलमानों ने अब ये भी कर दिया। फिर इसी तरह सरिया जैद बिन हारिसा का जो वाक़या था, जिससे कुरैश को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और गम था, इसने भी समझ लें कि तेल पर जलते का काम किया, और मुसलमानों के लिए जंग लड़ने के लिए इनके जहन पूरी तरह तैयार थे। याद रखिए, पहले जहनों में कत्लो गारत करी शुरू होती है, फिर हथियार चलते हैं। जिन हाथों में दमखम नहीं होता ना, वो तलवारें पकड़ के भी नहीं पकड़ पाते, और नतीजा क्या होता है कि वो फिर काम नहीं कर पाते। तो इससे हमारे लिए भी एक अमल की बात है, और वो क्या कि अगर आपको किसी के खिलाफ लड़ना है तो पहले लोगों के जहन तैयार कीजिए। आप उनको तलवारें पकड़ा दें, उनको पकड़नी ना आती हो, आप उनके हाथों में गाड़ियां दे दें, कहो जाओ दीन के काम करो, क्या करेंगे वो। पहले जहन तैयार कीजिए। याद रखिए, हम वही करते हैं जो हमारा जहन करवाता है। अगर जहन तैयार ना हो और आप बड़े से बड़े असबाब के साथ लोगों को उन कुर्सियों पर बिठा दें, नतीजा सिफर होगा। काम वही लोग करते हैं जिनके अपने दिल को चोट पड़ी होती है, और जो इस काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। चाहे ये कुफर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अमल की बातें हमारे लिए भी इसमें बहुत सारी हैं। खैर, साल पूरा हुआ, कुरैश की तैयारी पूरी हुई। एक साल तक आप देखिए ये मुसलमानों के खिलाफ तैयारियां करते रहे, इर्द गिर्द के गिरोहों को और अपने हलीफों को, लश्करों को मिलाकर तकरीबन 3,000 फौज तैयार हुई। कुरैश के कायदीन जो थे, उन्होंने एक राय दी कि अपनी औरतों को भी ले चलते हैं, ताकि जब औरतें साथ होंगी तो उनकी इज्जत और उनकी नामूस की हिफाजत का एहसास और ज़्यादा हमारे सिपाहियों के दिलों में इस्लाम के खिलाफ लड़ने का मौका बनाएगा। या फिर नोट कीजिएगा, कुफर ने हमेशा औरत को ज़रूर इस्तेमाल किया एक्सप्लाइटेशन के लिए। अबू जहल गया तो जाते हुए औरतों को ले गया, क्यों? कहा नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, क्योंकि फतह का जश्न भी तो मनाना है। वहाँ भी औरत थी, आज यहाँ भी आपको औरत दिखती है कि ये औरतों को लेके जाना चाहते हैं। नतीजा क्या हुआ कि ये लोग इस तरह से निकले कि तकरीबन 15 औरतें भी साथ थी। सवारी और बारबर्दारी के लिए तकरीबन 3,000 ऊँट थे, रिसाले के लिए 200 घोड़े थे, और घोड़ों को फ्रेश अप करने के लिए उन्होंने पूरे रास्ते ऐसे लेके गए कि उनके ऊपर कोई नहीं बैठा, क्योंकि घोड़ा पहले थक चुका होगा तो बाद में बैठना मुश्किल होगा। बहरहाल 700 जिरहें थी इनके पास हिफाजती हथियारों की सूरत में। अबू सुफियान को पूरे लश्कर का सिपा सालार बना दिया, और इस तरीके से ये लश्कर मुसलमानों के खिलाफ गुस्से में फुनकारता हुआ इस तरह से निकला कि नतीजा क्या निकला कि मुसलमानों को गुस्सा दिलाने के लिए और अपने अंदर एक नफरत पैदा करते हुए ये एक बहुत बड़ी जंग की खबरें सुनाते हुए वहां से निकले। अब तैयारी हो तो दूसरी तरफ पता ना चले ये कैसे हो सकता है। मदीना में इत्तला पहुंच चुकी थी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, कुरैश की सारी नकलो हरकत और जंगी तैयारियों का बड़ी होशियारी से मुतालिया कर रहे थे। जो ही यह लश्कर हरकत में आया, हज़रत अब्बास ने इसकी सारी तफसीलात पर मुश्तमिल एक ख़त फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। देखिए क्या, अब हज़रत अब्बास मक्का में थे ना, इस्लाम था, छुपाया हुआ था, तो फ़ायदा हुआ, पता क्या चला कि मोमिन कहीं भी होगा काम करेगा, वो अपना हिस्सा ज़रूर डाल देता, वो कभी भी अपने आप को उस चीज़ से महरूम नहीं करता। हज़रत अब्बास का जो कासिद था वो बहुत तेज़ी में पैगाम देने वाला था। मक्का से मदीने तक तकरीबन 500 किलोमीटर की मुसाफत सिर्फ 3 दिन में तय की। अल्लाह अकबर, ये होते हैं जज्बे, काम करने वाले ऐसे काम करेंगे। ख़त लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, आप मस्जिद कुबा में तशरीफ़ फरमा थे। उबई बिन काब ने यह ख़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। आपने उन्हें कहा कि ज़रा राजदारी रखना, इधर उधर बात ना फैले, मदीना आए और अंसार और महाजरीन के कायदीन से सलाह और मशवरा किया। हमें भी ये चीज़ बताती कि काम कैसे करो। नतीजा क्या होगा के बाहर छोटे लोग या आम पब्लिक में बात करने से पहले बड़े लोग जो लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अपने अपने लोगों के, उनको एतमाद में लिया जाए। हंगामी सूरत हाल के मुकाबले की तैयारी की गई। मदीना में आम तौर पर इस तरह के हालात थे कि किसी भी वक्त कुछ होगा। यानी आप कह सकते हैं कि हथियार बांध के लोग फिरने लगे थे। नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान हर किस्म के हालात और सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थे, नमाजों में भी हथियार अलग नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। अंसार का एक मुख्तसर सा दस्ता था जिसमें साद बिन वास, उसैद बिन हुज़ैर और साद बिन उबादा थे। नबी सल्लम की निगरानी पर तैनात था क्योंकि आपकी जान को ख़तरा था। ये लोग हथियार पहनकर सारी रात अल्लाह के नबी के दरवाजे पर गुजार देते। कुछ और दस्ते इस ख़तरे के पेश नज़र के गफलत की हालत में अचानक कोई हमला ना हो जाए, मदीना में दाखिले के मुख्तलिफ रास्तों पर मुतय्यन हो गए। खैर, मुसलमानों ने भी दुश्मनों की नकलो हरकत का पता लगाने के लिए इर्द गिर्द नज़र रखनी शुरू कर दी और इस तरह के ये हालात थे कि जिसमें इस जंग के हालात बनते गए। मक्की लश्कर मारूफ शाहरा पर चला, बिल्कुल ओपन जो रोड थी उस पर आया। अबवा के मुकाम पर जब यह लश्कर पहुंचा तो अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा ने यह तजवीज़ दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र उखेड़ दी जाए। नोट कीजिएगा ज़रा, कैसी एक्सप्लॉयटेशन की बातें हो रही हैं, किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है इन बातों में। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के जो नतायज निकल सकते थे, इसके खौफ से फिर उस लश्कर के कायदीन ने यह तजवीज़ मंजूर ना की। इसके बाद लश्कर ने अपना सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि मदीना के करीब पहुँच कर पहले वादी अकीक से गुजरा, फिर किसी कदर दाहिनी जानब कतरा कर ओहद के पहाड़ के करीब ऐनैन नाम के एक मुकाम पर, जो मदीना के शवाल में वादी कनात के किनारे पर एक बंजर ज़मीन है, वहाँ पड़ाव डाला। और यह जुमा 6 शवाल का दिन था। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हालात कैसे बन रहे हैं। वो तो अपनी तैयारियों में आ गए थे, तैयारी करके गए। आगे देखेंगे हम कि मुसलमानों ने किस तरीके से इस गिरोह का मुकाबला किया, मामला कैसे हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ हमें एक बहुत खूबसूरत हिकमत अमली दिखेगी, और वो क्या कि आप इर्द गिर्द के हालात से बेखबर नहीं होते थे। आप एक ऐसे लीडर, कायद या जर्नेल थे कि हालात के ऊपर उनकी गहरी नज़र होती थी। मदीना के जो भी इंटेलिजेंस थे उनकी तरफ से ये खबर पहुंच चुकी थी कि मक्की लश्कर मदीना की तरफ आ चुका है, और ये तक पता चल गया कि उन्होंने कहाँ पे पड़ाव डाला। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीटिंग बुलाई जिसको मजलिसे शूरा कहेंगे, और सबसे मशवरा किया। यहाँ देखिए कि आपको बहुत सारे अमल के नुक्ते मिलेंगे। कुरान पाक में सूरत आले इमरान में जब हम गज़वे उहद की डिटेल्स पढ़ते हैं, वहाँ भी बहुत सारे मॉरल्स होते हैं, और यहाँ तो वैसे ही हम सीरत पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए इसमें से सीखने की बात क्या पता चली कि मशवरे से काम लेना है, और दूसरी बात है कि हालात पे नज़र रखो, इधर उधर क्या हो रहा है, ताकि उस चीज़ के लिए तैयार रहो जो तुम पे मुसल्लत की जा सकती है किसी भी वक्त। फिर अगली बात ये थी कि सब ने जब मशवरा दिया तो उसके दौरान अल्लाह के नबी ने अपना एक ख्वाब सुनाया, और ख्वाब क्या था कि आपने देखा कि वल्लाह ही मैंने एक भली चीज़ देखी। मैंने देखा कि कुछ गायें ज़िबह की जा रही हैं, और मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ शिकस्तगी है, यानी अपनी तलवार को टूटा हुआ देखा, और ये भी देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज ज़िरा में दाखिल किया है। अब ये ख्वाब देखने में बिल्कुल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी वाला कुछ ख्वाब दिखता है। फिर आपने ख़ुद ही इसकी ताबीर भी बताई कि कुछ सहाबा कत्ल किए जाएंगे। तलवार में शिकस्तगी क्या है कि आपके घर का कोई करीबी शख्स शहीद होगा, और महफूज ज़िरा की ताबीर ये बताई कि इससे मुराद शहरे मदीना है। यहाँ से आप सोचिए कि सहाबा के दिलों पे क्या बीती होगी। अब पता चले लड़ाई हो रही है और आप सब में से कुछ लोग ज़रूर शहीद होंगे, कई निफाक वाले जैसी चीज़ों पर ही भाग जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी मुश्किलों में डालकर ऐसे लोगों से इस्लाम को पाक करते हैं जो मुश्किल में हों, जिनके अंदर निफाक आ चुका हो। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी इस्लाम पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो या तो इस्लाम ऐसे लोगों से पाक हो जाएगा जो निफाक वाले होते हैं, या फिर ऐसे लोग इस्लाम से अलग हो जाते हैं, ये इस्लाम ऐसे लोगों को पीछे कर देता है। यानी फिर ऐसे लोग जो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होती है, वो सामने आने लगते हैं, और उससे नतीजा क्या निकलता है कि एक इंसान फिर बिल्कुल फोकस हो के अपने हालात के मुताबिक काम करता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखा। अपने सहाबा कराम के सामने अपनी राय रखी कि हमें किस तरह से दिफा करना है, मदीने से बाहर निकलें कि ना निकलें। आपने फरमाया कि शहर में ही रहें, बाहर ना निकलें। अब अगर मुशरिकीन अपने कैंप में मुकीम रहेंगे तो बेमकसद और बुरा क्याम है, यानी फ़ायदा कुछ नहीं है, और अगर मदीने में दाखिल होते हैं तो मुसलमान गली कूचों के कोनों पर बैठ जाएंगे और इनसे जंग करेंगे। औरतें छतों के ऊपर से उन पर जो भी हथियार फेंक सकी वो फेंक देंगी। ये राय बहुत दुरुस्त थी। देखिए कि यही राय एक बहुत गलत सोच रखने वाले इंसान की भी थी, और वो था अब्दुल्ला बिन उबई। उसने भी कहा कि आपकी राय ठीक है। इस मजलिस में वो कबीला खजरज के सरदार की हैसियत से शरीक था, लेकिन इसके इत्तफाक की बुनियाद वो नहीं थी जो अल्लाह के नबी की थी। जंगी नुक्ते नज़र से यही मौक़िफ़ था, लेकिन असल बात यह है कि उसका मकसद ये था कि जंग भी ना हो, किसी को पता भी ना चले। शहर में जंग हुई फिर तो हर एक को लड़ना पड़ेगा, राइट? आप यहाँ से भी एक अमल की बात ले सकते हैं। एक ही राय देने वाले दो मुख्तलिफ लोग दिल में कुछ और छुपाए होते हैं, और बाज़ दफ़ा लीडर की राय किसी बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस या नॉन सिंसियर बंदे की राय से भी मिल सकती है। असल बात क्या है कि दिल में क्या है। बातें तो लोग बड़ी खूबसूरत करते हैं, असल तो देखा जाएगा कि उसके एंड पे रिज़ल्ट क्या निकला। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये राय थी, अल्लाह ताला को असल में कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला चाहते थे कि ये शख्स अपने साथियों के सामने रुसवा हो, सबको पता चले कि इसने कुफर और निफाक के ऊपर इस्लाम का जो पर्दा चढ़ाया हुआ है वो हट जाए, और इस मुश्किल वक्त में मुसलमानों को ये पता चल जाए कि उनके इर्द गिर्द कितने दुश्मन हैं जो आस्तीन के सांपों की तरह रेंग रहे हैं। अब ये एक राय थी लीडर की, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग थे जिनको बदर में शिरकत का मौका ना मिल सका। बड़े आलम फाजिल सहाबे कराम थे, वो कहने लगे, नहीं जी, हम तो मैदान में जाके लड़ेंगे। ये जहन में रखिएगा, यहाँ छोटा सा फ़र्क जहन में, आज के दौर की जंगें जो ना ये शहरों में लड़ी जाती हैं, गोला बारूद जिस पे जो हाथ आया, पता भी नहीं बेचारा कोई घर से निकला है, किसी मस्जिद में गया है, कोई अपने जाती काम के लिए हॉस्पिटल्स में, और ऊपर से बारूद बरसता है। पहले दौर में लोग मैदान जंग में जाते थे, फ़र्क क्या होता था कि भी मैदान जंग में बहादुरी जाते थे, या वो जाते थे जो वाकई संजीदा होते थे और जो इस्लाम के भी खिलाफ़ दुश्मनी रखते थे। उस दौर में लोग इस शौक़ से जंग भी करते थे बाज़ दफ़ा, कि जिस शौक़ से हो सकता है कि हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं। तो सहाबे कराम के अंदर एक तो इस्लाम की मोहब्बत बहुत थी, दूसरा उनको पहली ही जंग गज़वे बदर में मौका मिल सका लड़ने का, तो वो तमन्नाएं करते थे कि कोई ऐसा वक्त आ गया कि जब जंग का मौका मिला तो हम ज़रूर मैदान में जाएंगे। तब वो ये सोच रहे थे कि जंग में जाने की बजाय अपने शहर में रह के दिफा करना बुज़दिली होगी, लोग समझेंगे कि हम तो सामने ही ना आए। एक तरह से देखा जाए तो राय ये भी ठीक है, इससे भी अमल की बात है। कभी अपने ओपोनेंट को ये खुशी नहीं देनी चाहिए कि हम ये काम कर ही नहीं सके, क्योंकि दुश्मन को खुशी होगी उस बात से जिससे आपको दुख होगा। अब ये लोग ख़ास तौर पर जवान भी थे, पुरजोश थे, नबी सल्लम के अपने चचा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसमें थे, गज़वे बदर में ये अपनी बहादुरी के जौहर दिखा चुके थे। इन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में आपकी जान है, उस ज़ात की कसम जिसने आप पर किताब नाजिल की है, मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा यहाँ तक कि मदीना से बाहर अपनी तलवार के ज़रिए इनसे दो दो हाथ ना कर लूँ। अल्लाह अकबर। ऐसे जियालों को फिर देखिए अल्लाह ताला कितनी फतह देते हैं और कितनी ऑनर मिलती है इनको। अब यहाँ फिर अल्लाह के नबी ने अक्सरियत की राय पर अपनी राय तर्क कर दी, और आखिरी फैसला यही हुआ कि मदीना से बाहर निकलकर खुले मैदान में मार खा रही होगी। फिर अमल की बात आ गई, एक लीडर लीडर ही होता है, उसकी सोच ठीक भी थी, नबी सल्लम की राय बिल्कुल ठीक थी। कुजा ये कि अब्दुल्ला बिन उबई ने वो कहा ना कहा, इसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन जब सब लोगों को आपने देखा कि उससे मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, यानी अक्सरियत की राय मुख्तलिफ थी, तो अल्लाह के नबी ने अपनी बात को पीछे कर लिया। इससे क्या पता चलता है कि अच्छे लीडर का काम क्या होता है, कि जहाँ वो देखे कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, चलो एक एक्सपीरियंस ही सही मान लेनी चाहिए, कुछ दिन करने के बाद गलत काम लगेगा फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन फूट नहीं डलती। अगर ऐसे मौके पे लीडर अपनी बात रखे ना, तो फिर लोगों के दिल में ग्रज आता है। बाज़ कहते हैं, हाँ जी, हमारी तो माननी कोई नहीं, हमें क्यों फिर कहते हैं, फिर हमसे मशवरा क्यों लिया था। कुछ लोग होते हैं वो कुछ और बातें करते हैं, तो कभी कभी इंसान को पीछे हो जाना चाहिए जानते बूझते। और गैब तो अल्लाह के नबी भी नहीं जानते थे कि इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, वरना तो वो शायद कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ करते। तो जहाँ दीन का नुकसान ना हो रहा हो, वहाँ सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि चूँकि मैंने कह दिया, चूँकि मैं इंसान हूँ, चूँकि मैं माँ हूँ, चूँकि मैं बाप हूँ, ये चूँकि मैंने कह दिया वाली बात भी असल में शैतान की बात है। तो ऐसे मौके पे इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखिए कि ज़िंदगी में आपको हर एक को, हर इंसान अपने आप को देखे, उसको क्या अच्छा लगता है, आप कौन सी कुर्सी चाहते हैं, फ्लेक्सिबल, रिलैक्स, जिधर चाहे मोड़ ले मुड़ जाए, हल्की फुल्की, नरम। गद्दा कौन सा चाहिए, सॉफ्ट चाहिए ना, हमें से कोई सख्त चीज़ों को पसंद नहीं करता। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में इंतहाई सख्त हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ख़त्म होना जो होता है वो असल में किसी भी चीज़ की हलाकत का सबब बन जाता है। जो दरख्त मुड़ते नहीं वो टूट जाते हैं। अल्लाह के नबी ने यहाँ इसका अमली सबूत दिया कि कोई बात नहीं, हम आप सबकी बात को मान लेते हैं। इसके बाद इस्लामी लश्कर की तरतीब और मैदान जंग के लिए रवानगी का वक्त आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की नमाज़ पढ़ाई, लोगों को वाज़ व नसीहत फरमाया। यहाँ फिर अमल की बातें नोट कीजिए, किसी भी अच्छे से अच्छे काम में जा रहे हैं, चाहे कोई मीटिंग क्यों नहीं है, चाहे कोई और है, दीन का ही काम क्यों ना हो, थोड़ी देर बैठ के वाज़ व नसीहत करें। फिर आपने जिद्दोजहद की रग़बत दिलाई, यानी मेहनत करनी है, सब्र और साबित कदमी से गलबा हासिल हो सकता है, ये बात बताई। और साथ ही कहा कि दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्यों भाई, पिकनिक पे जा रहे थे, खाना खाने जा रहे थे होटल में, कैसे खुशी की लहर दौड़ती है, फ़र्क लगता है सहाबे कराम में और अपने अंदर। हमें तो ऐसी बातों पे फिक्र लग जाती है, हाय होगा क्या। याद रखिए, अल्लाह अपने बंदों से अपने काम कराता है, और उस बंदे से जो अल्लाह का काम करने का सुनकर खिल पड़े, जिसको तकलीफ़ होने लग जाए और जो रोने ही लग जाए कि हाय मेरे ऊपर ये काम आ गया, हाय ये भी मैं करूं, सारे काम मैं करूं, हमेशा ही मैं करूं, तो फिर ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बेन्याज हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबने असर की नमाज़ पढ़ी, लोग जमा हो चुके थे, इर्द गिर्द के सब लोग आ चुके थे। नमाज के बाद अब अंदर गए, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ थे। उन्होंने आपके सर पर अमामा बांधा और लिबास पहनाया, ये किस्म की जिसको आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली तैयारी का ऐलान था। आपने अपने ऊपर नीचे दो जिरहें पहनी, तलवारें लगाईं, हथियार से आरास्ता होकर लोगों के सामने आए। इससे भी पता चलता है कि प्रोटोकॉल के साथ काम करने चाहिए, पूरी तैयारी करके काम करें तो उससे इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, और दुश्मन को भी पता चल जाता है कि ये कोई ऐसे ही नहीं उठ के आ गए, जैसे हमने कहा बस उठ के आ जाओ, तो ये इस तरह नहीं आए बल्कि तैयारी के साथ आए हैं। लोग आपकी आमद के मुंतज़िर थे। लेकिन इस दौरान हज़रत साद बिन मास और उसैद बिन हुज़ैर ने लोगों से कहा कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्ती आमादा किया है, यानी ये लोगों को पता था कि आप नहीं जाना चाह रहे, आप शहर में रह के दिफा करना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव वॉर करना चाहते हैं, इकदामी नहीं दिफाई जंग करना चाहते थे, लेकिन लगता है कि तुम लोगों ने ज़बरदस्ती आपको मजबूर किया, लिहाजा अभी भी कह दो कि अल्लाह के नबी, मामला आपके हवाले, आप चाहें तो चलें, चाहें तो ना चलें, हम आपके साथ हैं। कुछ लोगों ने नदामत महसूस की। जब आप बाहर आए तो आपसे सॉरी वाले अंदाज में कहा कि अल्लाह के नबी, हमें आपकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी, आपको जो पसंद है वही कीजिए, अगर आप मदीना में रह के जंग करना चाहते हैं तो ऐसा ही कीजिए। उस पे अल्लाह के नबी ने बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ बोले कि कोई नबी जब अपना हथियार पहन ले तो फिर मुनासिब नहीं कि उसे उतारे, यहाँ तक कि अल्लाह उसके दरमियान और दुश्मन के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। तो इससे पता चलता है कि एक दफ़ा काम का इरादा कर लिया तो फिर चल पड़ो। फ़ैज़ा अज़म तफ़तवक्कल, सूरह आल इमरान में भी इसकी तरफ इशारा है। वशाविरहुम फ़िल अम्र, पहले मशवरा कर लीजिए, कोशिश कीजिए, सब करें, जब नियत कर ली उसके बाद फिर पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह के नबी ने लश्कर को तीन हिस्सों में तकसीम किया। एक महाजरीन का दस्ता था, इसका झंडा आपने मुसअब बिन उमैर को दिया। दूसरा कबीला औस यानी जो अंसारी थे उनका एक आपने ग्रुप बनाया, उसका झंडा उसैद बिन हुज़ैर को दिया गया। और तीसरा कबीला खजरज का दस्ता था, इसका झंडा आपने हुबाब बिन मुनज़िर को दिया। यहाँ से भी आपको ऑर्गेनाइजेशन समझ आती है, ग्रुप्स बना के काम करने चाहिए, चीज़ों को डिवाइड कर लो हल्के हल्के रात से, ताकि लोग उस चीज़ को फिर अच्छे तरीके से ले सकें। इसके बाद पूरा लश्कर 1,000 लोगों पर मुश्तमिल था, 100 ज़रा पोश थे, 50 शाहसवार थे यानी घोड़ों पर सवार थे, और बास कहते हैं कि कोई एक भी घोड़े पर सवार नहीं था, यानी घोड़े नहीं थे। इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हो को आपने मदीना के अंदर रहने वाले लोगों को नमाज़ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी दी। यहाँ से भी अमल की बात नोट कीजिएगा कि कहीं जाएं तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ लोगों को दे के जाएँ। हर एक को पता हो कि आपके जाने के बाद उसने क्या करना है, और फिर जाके पूछिए भी। किसी को काम देना और ना पूछना काम ना देने के बराबर है, क्योंकि जवाबदेही का एहसास लोगों को काम करने पे माइल कर देता है। जब कूच का ऐलान हुआ, आपने शमाल की तरफ का रुख किया। सल्लम ने ज़रा पहनी हुई थी और साद बिन माज और साद बिन उबादा ये आपके आगे आगे चल रहे थे। या फिर एक नोट करने का वक्त आ गया कि लीडर के आगे चला जा सकता है जबकि वो इसकी इजाज़त दे दे, और दूसरी बात है कि जब उसकी ज़रूरत हो। जाहरी बात है कि जो आगे थे फिर उनको जिम्मेदारियां निभाने के लिए पहले ही जाना पड़ेगा ना, तो ये कोई प्रोटोकॉल का मामला नहीं है। सनीयतुलविदा से आगे बढ़े तो एक दस्ता नज़र आया, बहुत खूबसूरत उम्दा हथियार पहने हुए था, पूरे लश्कर से अलग थलग था। आपने पूछा तो बताया गया कि खजरत के खलीफ यहूद हैं जो मुशरिकीन के खिलाफ शरीक जंग होना चाहते हैं। आपने पूछा क्या ये मुसलमान हो चुके हैं, लोगों ने कहा नहीं। इस पर आपने अहले शिर्क के खिलाफ अहले कुफर की मदद लेने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ा नुक्ता ये सोचने के काबिल है। आपने अल्लाह के नाम पे जंग करनी थी, कितनी ज़रूरत थी? 3 गुना लश्कर इससे बड़ा, मुसलमानों से बड़ा, लेकिन आपने ऐसे वक्त पर अहले कुफर की मदद लेने से इनकार किया। ये हैं वो वजूहात जिसकी वजह से फतह होती थी। इस्लाम में मुसलमान की डिग्निटी, इस्लाम की इज्जत बड़ी चीज़ है। हम कहते नहीं एड लेने के नाते कुछ भी कर लो, हम जब दूसरों से मदद लेने के लिए उनके पीछे फिरते हैं ना तो अल्लाह की मदद चली जाती है। हम यहाँ कोई फिकी बातें नहीं कर रहे कि ये जायज़ है कि नहीं, अच्छा फिर हम नॉन मुस्लिम से कोई मदद ले सकते हैं कि नहीं, कोई हथियार ले सकते हैं, नहीं। यहाँ तो गैरत की बात है। जिस बंदे को जिस पर भरोसा होता है वो उसी का हो जाता है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो अल्लाह का हो जाएगा, और जिसको लोगों पे मान होता है फिर बस दफ़ा उसको लोगों की बड़ी कड़ी शर्तें माननी पड़ती हैं ये सोचकर कि चलो ये भी तो हमारे काम आते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको नो थैंक्स कह के रुख्सत कर दिया। इसके बाद शेखान नाम का एक मुकाम था, वहाँ पहुँच कर आपने लश्कर का मुआयना किया। जो लोग छोटे या जंग ना करने के काबिल आए नज़र आए उनको वापस कर दिया। इससे भी पता चलता है कि बहुत भीड़ नहीं जमा कर लेनी चाहिए, काम के लोग लेके जाएं साथ। बस दफ़ा हम बहुत बड़े जत्थे जमा करने को कामयाबी कहते हैं और वो किसी काम के नहीं होते, और ये आपके ऊपर उनका कुछ ना कुछ तो बोझ होगा ना, कुछ खाना पीना रहना सोना। तो कहीं भी लेके जाएं तो छान पटक के लेके जाएं कि किन को लेके जाना है। जिन लोगों को वापस किया गया उनमें अब्दुल्ला बिन उमर थे, उसामा बिन जैद थे, छोटी उम्र के थे दोनों। शौक कितना था उस दौर में ये सोचने की बात है। जंग के मैदान से ऐसे वापस किए जा रहे हैं जैसे कहीं पिकनिक पे जाते हुए कुछ बच्चों को कहा जाए चलो भाग जाओ, तुम चले जाओ घर में चले जाओ, गाड़ी में जगह नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ तंग करोगे। क्या वो जज्बे थे, कैसे उस दौर का बच्चा बच्चा अल्लाह के नाम पे कटने मरने के लिए तैयार था। इसी तरह उसैद बिन जुहैर, जैद बिन साबित, जैद बिन अरकम, उराबा बिन औस, अमर बिन हज़म, अबू सईद खुदरी, जैद बिन हारिसा, साद बिन हब्बा। इसी तरह बास लोग इसमें बरा बिन आज़ब का नाम भी लेते हैं, लेकिन सही बुखारी की एक रिवायत से पता चलता है कि वो तोहत के मौके पर लड़ाई में शरीक थे। अब शायद बाद में चले गए हों या यहाँ से ही ना उनको वापस भेजाओ, वल्लाहु आलम। इसी तरह छोटी उम्र का होने के बावजूद राफे बिन हुदैज और समुरा बिन जुंदुब को जंग में शिरकत की इजाज़त मिल गई। क्यों भला, डिस्क्रिमिनेशन है? हैं कोई दुश्मन के थे, पसंद नहीं थे कि चलो ले जाओ और इन बच्चों को मरवाओ, या कोई बड़े पसंद के दोस्त के बच्चे थे कि चलो भाई इनको ले जाओ? ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इनके अंदर खूबी थी। और वो क्या कि राफे तीरंदाज थे, इसलिए इजाज़त मिली। जब इनको इजाज़त मिली तो समुरा ने कहा कि मैं तो राफे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इसे पिछाड़ सकता हूँ। अल्लाह के नबी को इत्तला दी गई, आपने कहा अपने सामने दोनों से कुश्ती करवाओ, यानी रेसलिंग करवाई गई, और फिर वाकई समुरा ने राफे को पिछाड़ दिया तो उनको भी इजाज़त मिली। आप ज़रा अपने बच्चों पे लेके तो सोचिए, आज जंग के लिए या इस्लाम के दिफा के लिए या इस्लाम की तबलीग के लिए या इस्लाम के किसी काम के लिए निकलना हो तो इसी तरह बच्चे बच्चे पीछे भागते हैं। आज तो हम नमाज पे भी ले जाएं तो बड़ी बात है, दर्स पे तो अम्मा ही जाएंगी, बच्ची तो नहीं जाएगी। किधर चले गए हमारे बच्चे? आज हमारी पसंद और हमारे बच्चों की पसंद में फ़र्क क्यों आ गया? इतना गैप क्यों आ गया हमारी और उनकी सोचों में? ये सोचने के नुक्ते हैं। کے ہی ہم نے ان کو موٹا تو نہیں کر دیا، سوچنے سے ان کی عقل پہ پردے تو نہیں پڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کے سفر میں نسلوں کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق دے ماں باپ کو، اور یہ شوق اور یہ لگن جو اس دور میں بچے بچے کو تھی اللہ تعالیٰ آج پھر پیدا کر دے. شام کا وقت ہو چکا تھا، اسی مقام پہ یعنی شیخ خان کے مقام پر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور رات بھی یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا. پہرے کے لیے 50 صحابہ کرام کو چوز کیا گیا جو کیمپ کے گرد چکر لگا رہے تھے. ان کے قائد محمد بن مسلمہ تھے، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی. ذکوان بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپہرہ دے رہے تھے. یہاں سے آپ نوٹ کیجئے گا کہ جنگوں میں جا رہے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت عام معاملہ سیکیورٹی پرابلم تھا، 50 لوگوں کو رات کو جاگنا پڑا، تو یقینی بات ہے کہ غفلت سے تو نہیں سو سکتے تھے. ہم نے کبھی اللہ کے دین کے لیے اتنی مشکلیں سہی؟ ایک لمحے کے لیے اگر آپ اور میں، کیونکہ ہم میدانی جنگ میں تو کم ہی جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہی پڑے، لیکن پڑ بھی جائے تو ابھی وہ حالات نہیں دکھتے کہ ہم جائیں، لیکن اب میدان جنگ کو میدان تعلیم بنا لیا کریں. ہم نے اللہ کے دین کے لیے کتنی مشکلات سہی، کتنی دفعہ ہم نکلے گھروں سے، کیا کیا ہم نے، سوچنے کی بات ہے. کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر گھر صاف کرو، پھر پکاؤ، یہی زندگی نہیں ہے ہماری؟ کیسی زندگی ہے یہ؟ بامقصد زندگی مانگے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ ہم جئیں تو تیری خاطر، ہم مریں تو تیری خاطر. فجر کے قریب شوت کے مقام پر عبداللہ بن ابئی نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور الگ ہو گیا. ذرا نوٹ کیجئے گا، دل کا بغض اور دل کا نفاق کہاں کہاں سر اٹھاتا ہے. فجر سے کچھ عرصہ پہلے آپ اٹھ کر چل پڑے، شوت کے مقام پر پہنچے، فجر کی نماز پڑھی. اب آپ دشمن کے بالکل قریب تھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. یہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابئی نے پھر بغاوت کی. تقریباً 1/3 پورے لشکر کا یعنی 300 لوگوں کو یہ لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ خواہ مخواہ اپنی جان کیوں دیں. اس پر بھی احتجاج کیا کہ رسول اللہ نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی مان لی. یہاں پھر عمل کی بات ہے، منافق کا مسئلہ اپنی جان ہوتی ہے، میری بات نہیں مانی. یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام کو یہ فائدہ ہوگا، اسلام کی دھاک بیٹھے گی، یہ کہہ رہا میری نہیں مانی اور ہمیں تو یقین ہے کہ اس جنگ میں مسلمان ہاریں گے، ایک کے مقابلے میں 3 لوگ ہیں. یہ بھی کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے، ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیلف کانشیس بہت ہوتی ہیں، خود پسند، بلکہ احساس سے کمتری کا نہیں احساس سے برتری کا شکار، میری نہیں مانی. بعض لوگ صرف اس لیے کسی میٹنگ میں یا کسی جگہ جا کے بات نہیں کرتے، نہیں جی میری تو مانی نہیں گئی، فلاں بھی تو دفعہ ہم نے یہ کہا تھا پھر نہیں مانا گیا، کچھ نہیں ہوتا جی، کہتی یا پھر مانتا کوئی نہیں ہماری بات. تو یاد رکھیے، مشورہ فیصلہ نہیں ہوتا، حکم نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پھر حکم دے دیں کہ بھئی آپ کو یہ کام کرنا ہے اور آپ پلیز کر لیجیے، ورنہ ہم ناراض ہوں گے. بظاہر تو اس نے یہ 2-4 باتیں کی تھیں نا، لیکن اصل میں اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا، بات کچھ اور تھی، ورنہ تو یہاں تک کیوں آیا؟ سوچنے کی بات ہے، پہلے قدم سے ہٹ جاتا. اصل میں وہ اس موقع پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں اس طرح پیدا کرنا چاہتا تھا، ان کو کمزور کرنا چاہتا تھا. سامنے دشمن ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے، اب ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور باقی جو رہ جائیں ان کے حوصلے بھی ٹوٹ جائیں، دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندے اور ان کے حوصلے بلند ہو. اصل میں یہ کاروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک تدبیر تھی. اس کے بعد اس منافق کو یہ توقع تھی کہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی سرداری اور سربراہی کے لیے راستہ کھل جائے گا. اصل میں تو وہی تاج پوشی کی رسم ذہن پہ تھی نا. بہرحال قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کے پورا ہونے میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتوں، قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے بھی قدم اکھڑ گئے. یاد رکھیے، ایک جملہ لکھ لیجئے یہاں پہ، کہ جب ایک اینٹ ہٹتی ہے نا تو اپنے ارد گرد والی 2 اینٹوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے. جب بھی کسی گروہ سے کوئی ایک بندہ نکلے گا، اس کے ارد گرد 1-2 ضرور سوچ میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ جس کو جما دے بس یہ اللہ جماتا ہے اور کوئی نہیں جما سکتا. کیسے لڑکتے لڑکتے لوگ واپس جاتے ہیں ایسے وقتوں پہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. کہ اللہ تو میرے لیے ہدایت کے راستے پہ آنے کے بعد گمراہی کی طرف پلٹنا ناممکن کر دے, مشکل کر دے, اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. دعا کیا کریں کہ اللہ تو میرا ہاتھ پکڑ لے. میں تیرا ہاتھ پکڑوں گی نا تو میں چھوڑ دوں گی, ذرا آزمائش ہے کہ دین کے نام پہ میں چھوڑ دوں گی, ذرا میری دنیا میں کوئی خوشی کی بات کوئی خیر کی بات آئے گی تو میں چھوڑ دوں گی. تو میرا ہاتھ تھام جو مجھے کبھی نہ چھوڑے. پھر اللہ ایسے لوگوں کو بچا لیتا ہے. انہی کے بارے میں سورۃ آل عمران آیت 122 میں آتا ہے, اس ہمت تو فتانی من کو منتب شلا و اللہ ولی یوہما و اللہ فل یتوکل المؤمنون. جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے, تو اس پہ بھی یہ خوش ہوئے. کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ تو کہہ دیا نا کہ واللہ ولیہما, کوئی بات نہیں ہم سے لغزش ہوئی ہمارا ذکر قرآن میں, لیکن اللہ نے کہہ دیا میں تمہارا دوست ہوں, انجام تو اچھا ہوا نا. اچھا, یہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت عمل کی بات ملتی ہے کہ بعض دفعہ مخلصین کے دلوں میں بھی شک آنے لگتا ہے لیکن اللہ ان کو بچا لیتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ دو انسان ہوں کسی رشتے میں بندھے ہوئے کسی معاہدے میں بندھے ہوئے اور ان کے دل ہمیشہ ایک جیسے رہیں, امپاسیبل ہے. قلب یقلب تقلیب, دل بدلنے والی چیز ہے, انقلاب. اس لیے دلوں کی حالت الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. انسان جمع رہے ہدایت کے سفر پہ تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے. جب منافقین واپس جانے لگے تو اس نازک موقع پر حضرت جابر کے والد عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, بلکہ تھوڑی ڈانٹ بھی پلا دی, اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلے کہ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو. تو اس میں جواب میں انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے. یہ جواب سن کر عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے کہ وہ اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار, یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے غنی کر دے گا. کہ تمہیں نہیں پرواہ تو پھر اللہ کا نبی بھی تم سے بے نیاز ہے. یہاں پھر ایک عمل کی بات ہے کہ جب لوگوں میں کسی کے قدم لڑکے تو چند سنجیدہ سینئر سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. وہ نہ سمجھیں لیکن آپ اپنے بڑے پن کا ثبوت دیں. اور آپ کو ہوتا ہے کہ یہی عبداللہ بن حرام اس جنگ میں شہید ہوتے ہوئے دکھیں گے. آگے آپ کو سناؤں گی کہ کیسے ان کے شہید ہونے پر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جھانک کے ان کو دیکھا تھا, کہ اللہ کے نبی نے جابر کو تسلی دی کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کے دیکھا. تو ہر نیکی کی کوئی قیمت ہے. یہاں دیکھیے کہ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے نا, کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو, لیکن ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور نیکی دے دی, اور وہ کہتی شہادت کی. تو کبھی بھی کوئی نیکی کرتے وقت اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیے, شاید یہ ایک نیکی آپ سے ایک اور بڑی نیکی کروا لے, آپ کو اور زیادہ موقع دے دے کہ آپ کس طریقے سے اس طرح کے کاموں میں لٹکے رہیں گے. جب ایک نیکی کرتے ہیں نا, جیسے آپ کبھی دیکھیں دھاگا بیچ میں بندھا ہوتا ہے نا, تو ایک چیز پکڑتے ہیں تو وہ دھاگے کے ساتھ دوسری بھی چیز ساتھ ساتھ آنے لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح بعض نیکیاں دوسری نیکیوں کے ساتھ بندھی بھی ہوتی ہیں. تو ایک نیکی دوسری نیکی کا پیچھا کرتی ہے. یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا دکھتا ہے. اور ان کے سارے سوال جواب پہ آیت بھی نازل ہو گئی جو ان لوگوں کے بارے میں ہی آتی ہے, سورۃ آل عمران ہے آیت 167. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے. یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں. منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے, اور جو کچھ چھپاتے ہیں अल्लाह इसे खूब जानता है। दिलों के पोल खुल के रहते हैं। इस बगावत और वापसी के बाद नबी सल्लम ने बाकी लश्कर को जमा किया। अब जिनकी तादाद 700 रह गई थी। देखिए, आपके हौसले नहीं टूटे। यहाँ से एक अच्छे लीडर की खूबी भी मिलती है कि लोग साथ चलें या साथ छोड़ें, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता होता है कि मैंने तो चलना है और चलते ही जाना है। जो काम अल्लाह कराएगा तन्हा ही कर लूँगा, कोई साथ ना भी हो तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं। और अच्छे लीडर्स टूटी हुई जमातों और टूटे हुए दिलों को भी जोड़ लेते हैं। जैसे जिस घर के बुज़ुर्ग बड़े अच्छे होते हैं ना, समझदार बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग उम्र में बड़े तो हो जाते हैं, बुज़ुर्ग नहीं होते। खुद ही एक की बुराइयाँ दूसरे से कर रहे होते हैं। मसलन एक बहू की बुराई दूसरे से, बड़ा बेटा आया तो छोटे की बुराइयाँ, छोटा आया तो बड़े की बुराइयाँ कर दी। तो वो उम्र में तो बड़े हो गए लेकिन बुज़ुर्ग नहीं हुए। बस बड़ों को बात करनी नहीं आती, बस बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं और हर बात जो कहनी नहीं होती वो भी कह देते हैं। तो अच्छे लीडर्स भी बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, वो ऐसे मौक़ों को संभाल लेते हैं। अंदर चाहे खून के आंसू रो रहे हों लेकिन बाहर से वो बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लश्कर को तैयार किया और जहाँ दुश्मन था उसकी तरफ चल पड़े। दुश्मन का पड़ाव आपके दरमियान और ओहद के दरमियान कई सिमत से हायल था। इसलिए आपने पूछा, कोई है जो हमें दुश्मन के पास से गुजरे बगैर किसी करीबी रास्ते से ले चले? अबू हैसमा बोले, जी अल्लाह के नबी, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। उन्होंने एक मुख्तसर सा रास्ता इख्तियार किया जो मुशरिकीन के लश्कर को मग़रिब की सीमा छोड़ता हुआ बनी हारिसा के हर्रा और खेतों से गुजरता था, क्योंकि वहाँ कोई रास्ते थोड़ी थे, हाईवेज या रोड्स तो थी नहीं, सहरा ही था। इधर से चलो उधर से चलो तो सिक्योर रास्ता लेने के लिए फिर किसी बड़े माहिर से रब्ता करना पड़ता था। इस रास्ते से गुजरते हुए लश्कर का गुज़र मुरब्बा बिन कैज़ी के बाग से हुआ। ये शख्स मुनाफिक भी था और नाबीना भी था। इसने लश्कर की आमद महसूस की तो मुसलमानों के चेहरों पर धूल फेंकने लगा और कहने लगा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो याद रखें, आपको मेरे बाग में आने की इजाज़त नहीं। लोग उसे कत्ल करने को लपके लेकिन आपने फरमाया, इसे कत्ल ना करो, ये दिल और आँख दोनों का अंधा है। अल्लाह हुक्म। फिर आप आगे बढ़े, वादी के आखिरी सिरे पर वाक़े ओहद पहाड़ की घाटी में नज़ूल फरमाया, वहीं अपने लश्कर का कैंप लगवाया। सामने मदीना था, पीछे ओहद का बुलंदोबाला पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया। यानी मुसलमान थे एक तरफ, दूसरी तरफ मदीना था, बीच में दुश्मन था। यहाँ से भी अमल की बात नोट कीजिए कि आपने जगह बड़ी खूबसूरत ढूँढी। एक अच्छा लीडर पहले सारे हालात को देखता है, कहाँ क्या होना चाहिए। अब आज मैदान की जंग की सफ़े तो नहीं है लेकिन आप एक दर्स कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कहाँ कौन बैठे, कुर्सी कहाँ हो, बैठने का रुख किधर है, लोगों का रुख किधर हो। यकीन करें, ये मैदान जंग से भी बाज़ दफ़ा अहम चीज़ें होती हैं। सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है सिटिंग अरेंजमेंट के गलत होने से। हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और फिर हत्तुल वसा हद तक जो भी कर सके उसको बेहतरी की तरफ काम करें। नबी सल्लम ने यहाँ पहुँच कर लश्कर की तरतीब और तंजीम कायम की। जंगी नुक्ते नज़र से इसे कई सफ़ों में तकसीम किया। माहिर तीर अंदाजों का एक दस्ता मुकर्रर किया। 50 लोग थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को आपने इनका लीडर बनाया और इनको एक छोटी सी पहाड़ी थी वादी कनात के जनूबी किनारे पर, उस पे खड़ा कर दिया। जबल रिमाह के नाम पे आज भी मारूफ है। वहाँ कहा कि आप चले जाओ और आपने जो हिदायत दी वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस दी और अब कितने बेहतरीन कमांडर थे। आपने फरमाया कि शख्स सवारों को तीर मारकर हमसे दूर रखो, यानी जो भी इधर से आए तीरों से उससे मुकाबला करो, वो पीछे से हम पर चढ़कर ना आए, हम जीतें या हारें तुम अपनी जगह रहना, तुम्हारी तरफ से हम पर हमला ना होने पाए। फिर आपने तीर अंदाजों को मुखातिब करके फरमाया, हमारी पुश्त की हिफाजत करना, अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को ना आना, और अगर देखो कि हम माले गनीमत समेट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक ना होना। सही बुखारी के अल्फाज में आता है कि आपने कहा, अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह ना छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूँ। और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी है और उन्हें कुचल दिया है, तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूँ। सारी बातों से क्या लग रहा है? जगह नहीं छोड़नी। तुम्हारा फतह शिकस्त, माले गनीमत, हार जीत से कोई ताल्लुक़ नहीं। देखिए, इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद भी नुकसान पहुंच जाता है, बड़ी अमल की बात है। बस जब आप कहते हैं सारी तो इंस्ट्रक्शंस दी थी, और कैसे समझाएं इनको? इतना कुछ तो बताते हैं फिर भी समझ नहीं आती। तो फिर अल्लाह के नबी का ये वक्त याद कर ले। कोई कसर नहीं आपने उठा रखी, लेकिन सदमा पहुंचा, लोगों ने जगह भी छोड़ी, लोग अपनी जगह से भी हिले। अल्लाह ताला अपनी बातें साबित करके रहता है। कभी कभी अल्लाह ऐसी चोटें डालता है, बस जब इंसान मायूस होने लगता है, हिम्मत टूटती है अपने साथियों की वजह से, क्या हो गया इनको, समझ क्यों नहीं आता, ये बात इनको समझ नहीं आई। लेकिन फिर उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए कि वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी हिदायत दी। अब ये वो रास्ता आपने बंद किया जहाँ से वाकई दुश्मन को मुसलमानों पे हमला करने की जुरत हो सकती थी। बाकी लश्कर में आपने दाई जाने पे हज़रत मुनज़िर बिन अमर को मुकर्रर किया और बाई जाने में आपने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को, और इनकी मदद के लिए मिक़दाद बिन अस्वद को वहाँ मुकर्रर कर दिया। हज़रत ज़ुबैर को ये मुहिम सौंपती कि वो खालिद बिन वलीद के शख्स सवारों की राह रोकेंगे। इस तरतीब के अलावा सफ़ के अगले हिस्से में बड़े बहादुर और प्रोमिनेंट किस्म के मुसलमानों को रखा कि जिनकी बहादुरी ज़रबुल मिसल भी थी, और एक एक को लोग कई कई हज़ार के बराबर समझते थे। बहुत बारीक बीनी और हिकमत अमली से नबी सल्लम ने ये सारा कुछ तैयार किया। इसी से आपके एक अच्छे कायद होने का पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि कोई कमांडर ख्वाह कितना ही ज़्यादा बासलाहियत क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बारीक बीन और हिकमत वाला मंसूबा तैयार नहीं कर सकता। क्योंकि आप बावजूद इसके कि दुश्मन के बाद जहाँ तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आपने अपने लिए वो जगह ढूंढी थी जो जंगी नुक्ते नज़र से मैदान जंग का सबसे बेहतरीन मुकाम था, कि पहाड़ की ओट लेकर पीछे से अपने आप को महफूज किया, बाईं यानी लेफ़्ट साइड पे जो टीला था वहाँ अपने लोगों को खड़ा कर दिया तीरंदाजों को, और पड़ाव के लिए ऊंची जगह रखी कि अगर खुदा ना खास्ता शिकस्त से दो चार होना पड़े तो भागने और पीछा किए जाने वालों की कैद में जाने की बजाय अपने कैंप में जगह ली जाए। दुश्मन तो पहले आ गए थे, लेकिन कुछ को पता ही नहीं होता कौन सी जगह लेनी है। बाज़ दफ़ा आप देखिए कोई प्रोग्राम होता है, भाई अपना अपना टेबल लगा लें, अपने लिए कोई भी जगह रख लें। कुछ लोग ऐसे ही बस झक्का चौकड़ी जो किया कर लिया, कुछ इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह ये लीडरशिप क्वालिटीज़ दे के हर चीज़ पे नज़र रहे, और फिर आप उसको अल्लाह के दीन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ किया। दुश्मन जो जगह ले चुका था वो नीची जगह थी, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए वो नुकसान का ज़रिया हो सकती थी। हल्की सी उनकी लغزش उनको मुसलमानों के हाथों में दे सकती थी, लेकिन नबी सल्लम के सलूक तो थोड़े थे, लेकिन तरतीब और तंजीम बड़ी खूबसूरत थी। और ये सारा अमल 7 शवाल 3 हिजरी को हुआ कि इस दौरान नबी सल्लम ने इन सब के साथ ये मामला किया। इतनी बातें हम जब सुनते पढ़ते हैं तो हकीकत में दिल में ख्याल आता है कि एक एक शख्स के अंदर इतना कुछ कैसे हो सकता है। यकीनन हो सकता है। ना सिर्फ ये कि आपने ये सब कुछ किया, बल्कि आप फिर अपनी बातों से स्पिरिट पैदा कर रहे थे, लश्कर के अंदर शुजात की रूह फूंक रहे थे। आपने ऐलान किया जब तक आप हुक्म ना दें जंग शुरू ना की जाए। आपने ऊपर नीचे दो जिरहें पहन रखी थी। अब आपने सहाबा को जंग की रग़बत दिलाई, जब दुश्मन से टकराओ तो देखो बहादुरी से लड़ना। दलेरी और बहादुरी की रूह फूंकते हुए एक नहायत तेज़ तलवार बेनियाम की और फरमाए, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे। कई सहाबा टूटे, लेकिन यानी जो आए उनमें हज़रत अली थे, ज़ुबैर बिन अवाम, उमर बिन ख़त्ताब, लेकिन अबू दुजाना ने आगे बढ़कर कहा, अल्लाह के नबी इसका हक क्या है। आपने फरमाया, इससे दुश्मन के चेहरे को मारो यहाँ तक कि वो टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मैं इसका हक अदा करना चाहता हूँ। इस पर आपने उनको ये तलवार दी। अबू दुजाना बड़े बहादुर थे, लड़ाई के वक्त अकड़ कर चलते। इनके पास एक सुर्ख पट्टी थी, जब आप बांध लेते तो लोग समझ जाते कि अब वो मौत तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने तलवार ली, सर पर पट्टी बांधी और फरीकैन की सफ़ों के दरमियान अकड़ कर चलने लगे। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि ये चाल अल्लाह को नापसंद है, लेकिन इस मौके पर नहीं। तो ये सारे मामलात होते रहते हैं बीच में, जिसके साथ फिर जंगें लड़ी जाती हैं। जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं, इसके पीछे बहुत ब्रेन शार्प माइंड्स होते हैं। आपको कहीं भी मुसलमान अनाड़ी बुद्धू सिर्फ नारे लगाने वाले लगे, कितना प्रैक्टिकल दीन है। और अल्लाह के नबी कितने प्रैक्टिकल तरीके से जंगों को मैनेज करते थे। हम आज एक छोटा सा काम नहीं कर पाते दीन का, और कहाँ अपने दुश्मनों को सामने खड़ा देखकर भी हिम्मत नहीं हारी। इस पे आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप रहबरे कामिल किताब का टॉपिक नबी सल्लम एक जर्नेल की हैसियत से ये सुन लें, अगर उस वेबसाइट पे हो और उसका लिंक है काम कर रहा है तो वो दे दीजिए, और सुनिए कि किस तरीके से आप एक अच्छे लीडर बन के लोगों को रग़बत दिलाते थे। मैनेजमेंट क्वालिटीज़ दिख रही हैं, कमिटेड होना दिख रहा है, ऑर्गेनाइज्ड होना दिख रहा है। हर काम शुरू करने से पहले पूरी प्लानिंग करनी होगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये प्लानिंग हकीकत में इंसान को फिर कामों को बहुत अच्छा करने देती है। अब देखिए ना कि उस दौर की क्या थी लड़ाइयाँ, बदर, ओहद, इस तरह के नाम लेते हैं आप। आज की क्या है, चले मेरी और आपकी क्या जंगें हैं ये लिखिए, और करीब चलते हैं। नूरुल कुरान के फोरम पे आप बैठे हैं, कई साथी काम करते हैं, कई आते हैं, हमारे महाज कौन से हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारा हर नया कोर्स एक नई जंग है। किससे? दुश्मन से। और दुश्मन कौन है? शैतान। लड़ाई किस चीज़ से? जहालत से। हमारे पास ऐसी ऑप्शंस आती रहती हैं। कितना ज़रूरी होता है ऐसे वक्तों पे इंसान बेहतरीन तरीके से मैनेज करे, ऑर्गेनाइज हो, हर मुमकिन हद तक उस काम में अपना हिस्सा डाले। हर नया कोर्स, हर नई क्लास, हर नया प्रोग्राम हमारे लिए एक महा से कम नहीं होता।